Okay, well, let's ask for the Lord's blessing. Our Father in heaven,
हमारे स्वर्गीय पिता,
we love you.
हम आपको प्यार करते हैं प्रभु.
Thank you for loving us.
प्रभु हमें प्यार करने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं.
Thank you for sending your son.
प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं अपने बेटे को हमारे लिए भेजने के लिए.
Thank you for the gospel work of Jesus.
प्रभु आपके सुसमाचार के कार्य के लिए आपका धन्यवाद करते हैं.
We thank you for your precious Holy Spirit.
आपकी उस बहुमूल्य पवित्र आत्मा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं.
We ask that you would bless us now.
और हम प्रभु आपसे विनती करते हैं आज इस समय हमें आशीषित कर.
Open our mind.
हमारे दिल दिमाग को खोल.
Open our heart.
हमारा दिल खोल.
To receive the food of your word.
ओ प्रभु जी आपका जो वचन का जो भोजन है हम उसे ग्रहण कर सकें.
And even as we hear the word.
और जैसा हम प्रभु जी वचन को सुनते हैं.
Help us to worship you.
और होने देखिए उसके जरिए हम आपकी आराधना कर सकें.
In Jesus name.
प्रभु यीशु मसीह के नाम से.
Amen. 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 Well, I invite you again to John chapter 1.
फिर से मैं आपको चाहता हूं कि हम वही यूहन्ना के पहले अध्याय में आ जाएं.
We've been looking at the beauty of Jesus Christ.
और हम प्रभु यीशु मसीह की सुंदरता की तरफ ध्यान कर रहे थे, देख रहे थे.
We've been looking at the gospel.
हम सुसमाचार की तरफ देख रहे थे, उस पर ध्यान कर रहे थे.
And the glory of Jesus.
और प्रभु यीशु मसीह की महिमा पर ध्यान कर रहे थे.
In this session, we want to continue that theme.
और उन्हीं चीजों पर हम फिर से लगातार उन्हीं बातों पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं.
We concluded our last session looking at verse 14.
और हमने जो कंक्लूड किया था वो 14 आयत में, यूहन्ना की 14 आयत में हमने उसका कंक्लूड किया था.
In this session, we want to touch the final phrase of that verse.
और इस समय हम खास उस जो खास वहां पे एक फ्रेज है उसको छूना चाहते हैं, हम लोग उस पर ध्यान करना चाहते हैं.
Let's read the verse again.
आइए हम उस वचन को दोबारा से पढ़ें.
और वचन जो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण था, देहधारी हुआ और हमारे बीच में निवास किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा.
Amen.
Amen.
The phrase full of grace, full of truth.
जो वो फ्रेज है जिस पर हम ध्यान करना चाहते हैं, अनुग्रह से भरा हुआ है, दया से भरा हुआ.
The Lord Jesus Christ is one person.
प्रभु यीशु मसीह एक अकेला व्यक्ति है.
He is fully God and fully man.
और वो पूर्ण परमेश्वर है और पूर्ण ही प्रभु है.
He is not two people, but one person.
वो दो लोग नहीं है, वो एक ही है.
And he is full of grace.
वो पूर्ण रूप से अनुग्रह से भरा हुआ है.
And he is full of truth.
और सच्चाई से पूर्ण है.
In one person, full of both grace and
और
truth.
और दोनों चीजों से एक ही व्यक्ति पूरा भरा हुआ है.
Let's focus first on the grace of Jesus Christ.
आइए हम प्रभु यीशु मसीह की जो अनुग्रह है उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे.
This word for full means filled to the very top.
और इसमें भरे हुए का मतलब कि पूरा ऊपर तक, किनारे तक, ऊपर तक भरा हुआ है.
Notice in John chapter 2 verse 7.
यूहन्ना के दूसरे अध्याय की 7 वचन में आप देखिए, ध्यान दीजिए.
When Jesus performed his first miracle.
यीशु मसीह ने ये अपना पहला आश्चर्यकर्म जब वहां पे किया था.
The wine was gone from the wedding.
और जब एक शादी में जो दाखरस घट गया था.
And Jesus saw 6 pots for purification.
प्रभु यीशु मसीह ने 6 मटकों को देखा और जो उन्होंने शुद्ध होने के लिए रखे थे.
Each pot, verse 6 says, could hold 20 or 30 gallons of water.
और एक मटके में वहां पे कितना,
verse 6,
70 से 80 लीटर तक समाता था.
But notice the little word in verse 7.
सातवें वचन में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए.
Fill the pots to the brim.
और वो नीचे से लेकर ऊपर तक, मुंह तक, मुंह तक भरे हुए थे.
When we get our water from the store, the American bottled water.
हम वहाँ पे जो अमेरिका में स्टोर होते हैं वहाँ से बोतल जब लेते हैं.
Like the bottle on the table.
जैसी बोतल वो टेबल पे पड़ी हुई है पीछे.
They don't fill it to the top. It's just a little bit less.
और वो उसको पूरा भर के नहीं देते, उसको थोड़ा सा कम रखते हैं.
But the Lord Jesus Christ filled these pots to the very top.
और प्रभु यीशु मसीह ने इन मटकों प्रभु यीशु मसीह पूर्ण ऊपर तक भरे हुए थे.
That's a picture of his own fullness.
और ये उसके उसका चित्र है जिसको हम उसमें देख सकते हैं कि वो कितना भरा हुआ था.
The original word in John 1 means full and overflowing.
और पहले वचन में जैसा वहां पे लिखा है कि वो पूरा और बाहर भी उमर रहा था.
He is full of grace, full of truth.
पूर्ण रूप से अनुग्रह से भरे हुए थे.
Verse 16 says,
16 वचन में ये देखते हैं,
of his fullness we have all received.
और वहां पे लिखा है कि क्योंकि उसकी परिपूर्णता में को हम प्राप्त करते हैं.
This is one of the wonderful things about the Lord Jesus.
ये एक बहुत ही अद्भुत बात है प्रभु यीशु मसीह में.
Millions of people,
कितने लाखों करोड़ों लोग,
have taken their little life,
और उन्होंने छोटा सा जीवन लिया है,
and put it into the ocean of his fullness,
और इस भरे हुए समुद्र के बीच में डाल दिया.
We've all come out of Christ completely full.
और जब उसमें से यीशु मसीह से हम बाहर आते हैं तो हम लोग पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं, कंप्लीट होते हैं.
And even though millions have come to his fullness,
और लाखों लोग उसके उस भरेपन में उसमें उसके भरे हुए जीवन में आकर मिलते हैं.
Jesus still remains completely full.
पर उसके बावजूद भी इतने लोगों को आकर उसमें से लेके जाने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह उस दया से उस अनुग्रह से भरे हुए हैं.
This is a picture that Jesus has enough for you.
और ये जो चित्र है प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए दिखाया है.
Let's look at his grace.
आइए उसके अनुग्रह पर ध्यान करें.
There are so many verses we could use, but
बहुत सारी आयतें आप देख सकते हैं पर आप निकालिए.
Turn to 2 Corinthians chapter 8.
दूसरा कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय.
Verse 9.
उसकी नौ पद कोई पढ़ लीजिए.
Before we read it, let all the brothers and sisters find the place. 2 Corinthians chapter 8, verse 9.
ढूंढ लीजिए जल्दी से.
क्योंकि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो कि धनी होते हुए भी वह तुम्हारे लिए निर्धन बन गया कि तुम उसकी निर्धनता के द्वारा धनी बन जाओ.
Thank you.
Amen.
The beginning of the verse says, you know the grace of our Lord Jesus Christ.
जहां
पे 2 Corinthians 8, verse 9, does it begin by saying, chapter 8, yeah. verse 9, you know the grace of our Lord Jesus Christ?
हाँ जी, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो, वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया.
Okay, so the verse is talking about the grace of the Lord Jesus.
यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के बारे में बात की गई है.
But notice very carefully how the verse describes or explains his grace.
और इस आयत में आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि कैसे उसको उसकी व्याख्या की गई है, उसकी दया की और उसके अनुग्रह की व्याख्या किस प्रकार से किया गया.
Do you see the verse?
क्या आपने देखी है ये वचन को देखा?
It says,
8 के 9 को.
It says, though he was rich,
जबकि वह धनी था,
he became poor,
और वो हमारे लिए गरीब बन गया,
so that you, through his poverty,
आप उसकी गरीबी में से,
might become rich,
और आप अमीर बन गए, बन जाएं.
Is this a prosperity gospel verse?
क्या ये एक उन्नति का सुसमाचार है, बढ़ने का, कि हमें कुछ दुनियावी चीजें प्राप्त हों?
Is this verse teaching that Jesus wants everyone to become rich?
क्या यहाँ पे इस वचन का ये मतलब है कि सारे लोग बहुत अमीर अमीर बन जाएं?
No.
ऐसा नहीं है.
No. The word rich has to be understood in its context.
और जो यहां पे धनी होने का जो मतलब है, अगर उसके असली उसमें मतलब में पहुंचेंगे तो उसके उसको देखना पड़ेगा कि क्या कहना चाहते हैं वहां पे.
Okay. It says he was rich.
वहां पे लिखा है कि वह धनी था.
Then he became poor.
और वह गरीब बन गया, कंगाल बन गया.
So the first use of the word rich,
पहले धनी शब्द इस्तेमाल किया गया,
is referring to his eternal richness.
और वो उसके अनंत धनी होने को दर्शा रहा है.
Where he enjoyed perfect fellowship with the Father and the Spirit.
और जहां पे वो परिपूर्ण प्रभु के साथ संगति होगी.
Where he existed for all eternity.
जहां पे वो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा.
That one who was rich became poor.
और उस अनंत जीवन में से वो दुनियावी जीवन में जब आया तो इसका मतलब है वो उस गरीबी के जीवन में आया.
It doesn't only mean physical poverty.
और इसका इसका मतलब ये नहीं है कि जो भौतिक चीजों की गरीबी है.
It means he went from the sinless heaven to the sin-torn world.
और इसका मतलब यह है कि वो जहां पे कोई पाप नहीं, पवित्रता में से एक पाप की जगह में आया है.
He came into the poverty of a broken world.
और वो ऐसी कंगाली की जगह में, गरीबी की जगह में आया जहां पे बहुत सारे जो पापों से भरा हुआ था.
Where sin was all around him.
जहां पे चारों तरफ पाप ही पाप था.
All the people were broken.
सभी लोग टूटे हुए थे.
All the people were ruined.
और सब लोग नष्ट हुए हुए लोग थे.
All the people were spiritually poor.
और आत्मिक रूप से सभी लोग कंगाल थे.
And the verse says, through his poverty.
उसकी गरीबी के जरिए, उसकी कंगाली के जरिए,
you might become rich.
आप उसकी कंगाली के जरिए आप अमीर हो सके, धनी हो सके.
His poverty refers to his suffering, his death, his resurrection.
और जो उसकी जो गरीबी है, उसकी जो कंगाली, वो इस बात को दर्शाती है कि वो दुनिया में आया, दुनिया में आकर उसने दुख उठाए, उसने क्रूस पर चढ़ाया गया और मारा गया.
So that you might become rich.
ताकि आप लोग धनी हो सकें.
Richness is really the wealth that no one can take from you.
और जो यहां पे धनी होने का मतलब जो यहां पे दिखा रहा है वो ऐसे वाला धन है जिसको कोई आपसे ले नहीं सकता.
If someone took away all your things, all your possessions, what would you have left?
और यदि आपका जो धन है उसको कोई आपकी सारी चीजों को कोई सभी ले ले तो आपके पास क्या बचेगा?
The wealth that the Lord Jesus provides, the richness that he provides.
पर आपके पास जो बचेगा वो बचेगा जो प्रभु यीशु मसीह ने आपको गरीब से अमीर बनाया है, वो अमीरी, वो धनीपन आपका बच जाएगा.
Is that he brings us to enjoy the wealth of God, the glory of God, the fellowship of God.
और वो क्या है, वो कि प्रभु के साथ हमेशा हमेशा आप रहेंगे और परमेश्वर की संगति में रहेंगे और उसकी संगति को आनंद में आनंद करेंगे उसकी संगति.
And notice the beginning of the verse says, this is the grace of the Lord Jesus.
और वहां पे आप उस बात की तरफ अगर ध्यान केंद्रित करेंगे, वहां पे लिखा है ये प्रभु का अनुग्रह है.
So in verse 14 says he's full of grace.
जब 14 आयत में 16 में या
14 in the 14 full of grace, full of truth. 16 says we receive grace on top of grace. Both verses.
जैसा कि 14 वचन में लिखा है कि वह अनुग्रह से भरा हुआ है.
It means there's enough grace in him for every one of you.
और इसका मतलब यह है कि उसके पास इतना अनुग्रह है जो सभी को तृप्त कर सकता है, सभी को मिल सकता है.
He has enough to bring you all into the wealth, the richness of God's own fellowship.
और आपको उस उसके धनीपन में और उसके अमीरी में आपको शामिल होना है.
Okay, what does it mean that he is full of truth?
और इसका क्या मतलब है कि वह सच्चाई से परिपूर्ण है?
If the verse only said Jesus is full of grace,
और यदि इस आयत में ऐसा लिखा होता है कि यीशु मसीह अनुग्रह से भरा हुआ है,
we would all be,
सच्चाई से भरा हुआ है,
we would all be tempted to abuse his grace.
और हम उस बात के लिए परीक्षा में पड़ जाते कि हम उसकी उसकी जो अनुग्रह को हम हो सकता है उस पर दोष लगा सकते.
We would think, oh, if he will let me go to heaven, then I'll live however I please until I get there.
और अगर मुझे स्वर्ग में जाना है तो मुझे ये संसारिक सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी.
But he's not only full of grace, he's also full of truth.
वो अनुग्रह से भरा हुआ नहीं बल्कि वह सच्चाई से भी परिपूर्ण है.
That means he gives us the instruction of how to honor God.
उसमें इस बात की शिक्षा दी गई है कि हम परमेश्वर को कैसे आदर कर सकते हैं.
Both in his teaching and in his example.
और जहां पे जैसा कि हम उसकी जो शिक्षा है उसमें देखते हैं कि जो हमारे लिए एक उदाहरण की तरह है.
Let's have someone quote for us John 14 verse 6. Quote it.
आइए हम उसमें से 14 में से कुछ चीज उसके लिए देखें.
Yeah. मार्ग सत्य और
हिंदी या
मैं ही हूं कोई भी मेरे बिना पिता के पास नहीं पहुंचता.
या ही इज नॉट ओनली फुल ऑफ ट्रूथ, ही इज द ट्रूथ.
वो इतना नहीं कि वो सच्चाई से परिपूर्ण है पर वो पूरा ही सच्चा है.
इट स्पीक्स टू हिज कैरेक्टर, हिज इंटेग्रिटी.
वो उसके इस बात में, इस वचन में वो उसके पूरे वैभव को और उसकी सच्चाई को प्रकट करते हैं.
To be full of truth means to be right, to be true.
इसका मतलब है कि जब सच्चाई में परिपूर्ण का मतलब कि वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई कमी नहीं है, वो बिल्कुल सच्चा है.
You cannot walk closely with Jesus and lack integrity, lack truth. You cannot be a liar and fellowship with Jesus.
आप जब प्रभु यीशु मसीह के नजदीक हो सकते हैं तो आप वो अपने वैभव को नहीं खो सकते और उसकी सच्चाई को नहीं खो सकते और उसके उसके बिना आप उसके साथ रह नहीं सकते.
To have his grace requires that we also have his truth.
और जैसा कि उसका अनुग्रह हमारे जरूरी है और उसके साथ साथ हमें उसकी सच्चाई की भी जरूरत
होती है. Let's turn to John 17.
आइए यूहन्ना 17 को देखेंगे.
This verse will probably be familiar to you.
ये इसी से मिलती जुलती ये आयत है.
I would like for you to memorize it if you have not yet done so.
मैं आपसे चाहता हूं कि ये वचन को आप याद करें, मेमोराइज करें, जैसा कि आपको बोला गया था और हो सकता है किसी किसी ने किया भी होगा.
John 17:17.
यूहन्ना 17:17.
सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है.
The Lord Jesus Christ is the truth. He is the truth, John 14.
यूहन्ना वहां पे कहा कि 14 में कहा कि वो सच है, यीशु मसीह सच है.
John 1, he's full of truth.
और यूहन्ना 1 में कहता है कि वो अनुग्रह से भरा हुआ है, सच्चाई से भरा हुआ है.
Even though he's full of truth and he is the truth, he still points his people to the word of truth.
जबकि वो सच्चा है और उसके अंदर सच्चाई है और वो यहां पे भी सच्चाई पर सच्चाई की बात कर रहे हैं.
Everyone who walks with Jesus will want to know this book.
जो भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है वो सबसे पहले सब चीजें जानना चाहता है कि इस किताब में, इस पुस्तक में क्या लिखा है.
In this verse, Jesus is asking the Father to sanctify us, purify us by the truth of God's word.
इस किताब में प्रभु यीशु मसीह पिता से कहते हैं कि इन्हें मुझे पवित्र कर, शुद्ध कर.
When the Lord Jesus was tempted by Satan,
जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई थी शैतान के द्वारा,
Satan said, "Turn the stone into bread."
जहाँ पे शैतान ने यीशु मसीह से कहा था कि जो ये आप ऐसा करो कि ये पत्थरों को बोलो कि वो रोटी बन जाएं.
What did Jesus say to Satan?
क्या कहा था यीशु मसीह ने शैतान से?
Amen. Amen. Every word that proceeds from the mouth of God.
प्रत्येक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे इंसान जिंदा रहता है.
To walk with Jesus, we must walk with him according to his word.
हमें उसके संग चलना है, उसके साथ साथ चलना है जैसा वचन में कहा गया है.
Turn with me to Jeremiah.
आइए यर्मिया की पुस्तक में देखेंगे.
Chapter 15.
उसका 15 अध्याय.
Jeremiah chapter 15 verse 16.
15 की 16. यर्मिया 15:16.
तेरे वचन पाकर मैंने उन्हें खा लिया और तेरे वचन मेरे हृदय के लिए आनंद और हर्ष के कारण बने, क्योंकि हे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, मैं तेरे नाम का कहलाता हूँ.
How is your relationship with God's word?
आपका परमेश्वर के वचन के प्रति क्या रिश्ता है?
Jeremiah's relationship was not only casual.
उसका जो परमेश्वर के साथ जो यर्मिया का रिश्ता था वो ऐसा सामान्य नहीं था.
Jeremiah would not wait for someone else to give him God's words.
और उसका जो रिश्ता ऐसा नहीं था कि कोई आएगा और कोई मुझे वचन देगा.
He says, "When I found your words, I ate them."
और उसने कहा कि जब मैंने तेरे वचन को पाया मैंने उसे खा लिया.
It's a picture of digesting, of taking in the words of God.
और इसका मतलब है हजम कर लेना, कोई चीज को लेकर अपने अंदर हजम कर लेना.
He's saying, I live by your word.
और वो कहता है कि मैं तेरे वचन के जरिए जिंदा हूं.
Like food gives life to our body, God's word gives life to our soul.
जैसे कि जो भोजन है हमारे शरीर को शक्ति देता है, लेकिन जो वचन है हमारे आत्मिकता को शक्ति देता है, हमारी आत्मा को शक्ति देता है.
He says, "Your words are a joy and a delight to my heart."
तेरे वचन मेरे मेरे जो जीवन को चमकाते हैं.
Amen. Turn to Psalm chapter 19.
भजन संहिता 19.
1:9. Psalm 19, verse. We'll read, let's read maybe 7 and following. Let's see. Psalm 19. Let's read verse 7 through 11.
7 से 11 तक कोई पढ़े.
यहोवा की व्यवस्था सिद्ध है जो प्राण को पुनः नया कर देती है. यहोवा के नियम विश्वास योग्य है जो भोलों को बुद्धिमान बना देते हैं. यहोवा के उपदेश सही है जो हृदय को आनंदित कर देते हैं. यहोवा की आज्ञा शुद्ध है जो आंखों को ज्योतिमय कर देती है. यहोवा का वह निर्मल है जो अनंत काल तक बना रहता है. यहोवा की विधियां सत्य है और पूर्णतः धर्मय है. वे सोने से हाँ बहुत से उठाए हुए सोने से भी अधिक मन भावने हैं. वे तो मधु से यहाँ तक कि टपकने वाले छत्ते से भी मधुर है. इनके द्वारा तो तेरे दास को चेतावनी मिलती है. इनका पालन करने से बड़ा लाभ होता है.
Amen.
Amen.
Do you feel this way about God's word?
क्या जैसा यहाँ पे आपने अभी पढ़ा 7 से लेकर 11 तक, क्या आप ऐसा महसूस करते हैं जैसा भजन में लिखा है कि उसके वचन की जो यहाँ पे व्याख्या की गई है?
Focus especially on verse 10.
10 वचन की तरफ खास करके ध्यान दीजिए.
Your word is more desirable than gold.
वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं.
That was the most precious currency, the most precious money in the psalmist's day.
और यहाँ पे जो जो सोना है वो सबसे महंगे वाली, सबसे कीमती वाली एक धातु है, मुद्रा है.
I want you to imagine as we're leaving the conference today. Imagine leaving the conference.
आप ऐसा सोचें कि आज हम ये कॉन्फ्रेंस को छोड़कर जा रहे हैं.
And all the way down the mountain.
और जब नीचे जाते हैं, नीचे तक.
Every kilometer.
और हर एक किलोमीटर पे जाकर.
There are large piles of rupees in the middle of the roadway.
और वहां पे बहुत सारा ढेर लगा हुआ पैसों का.
The psalmist is saying that would be an inconvenience for me.
और पर जो यहां पे अगर उसके सामने ऐसा हो तो बोलता है कि ये चीजों को देखकर वो अपने आप में एक असहमत सा नजर आता है, उसके अंदर कुछ जैसे घबराहट सी होती है उनको देखकर.
इफ बियॉन्ड ईच पाइल ऑफ रूपीज देयर वाज अ वर्स ऑफ द बाइबल.
और उसके हर एक पैसे के ढेर के बाद वचन है, प्रभु का वचन है.
ही सेइंग इट वुड बी एन इनकन्वीनियंस. आई वुड हैव टू स्टेप ओवर द गोल्ड to get the good.
और मुझे आप सोचे कि जैसे मुझे एक पैसे के ढेर को पार करके वचन को लेना है.
Is this your relationship with God's word?
क्या ऐसा आपके लिए संभव होगा कि इतना अच्छा रिश्ता है आपका कि वो ऐसा कर सकेंगे आप?
Notice also in verse 10.
और 10 आयत में भी इसको आप दे सकते हैं.
There's another illustration.
एक और उदाहरण यहाँ पे है.
Here in the mountains, they have very good butter, peanut butter.
यहाँ पे जो आप रोज बटर खाते हैं, आज भी सुबह खाया, वो बहुत बटर बहुत अच्छा है यहाँ का.
People have told me that it's the very best peanut butter in India.
और मैं सोचता हूँ कि
वो. Is it true?
Yeah.
Okay.
Right. ये सबसे अच्छा हिंदुस्तान का यही वो बटर है.
In this verse, the psalmist is talking about. Not honey, but the very, very best honey.
यहाँ पे शहद की बात कर रहा है, मधु की बात कर रहा है, पर एक आम मधु की नहीं, पर बहुत अच्छी क्वालिटी वाले, बहुत अच्छे वाले मधु की बात कर रहा है.
Not the honey that's in a can at the market.
और उस वाले शहद की बात नहीं करता जो मार्केट में बिकता है और वो कैन के अंदर बंद है.
But the honey that drips directly from the honeycomb.
और उस शहद की बात कर रहा है जो सीधा छत्ते में से नीचे टपक रहा है.
The psalmist says, "Your word is better to me than the sweetest honey."
और जो तेरे वचन है वो उस टपकने वाले छत्ते से भी मीठे हैं.
Your word is better to me than the most precious gold.
तेरे वचन, तेरा जो वचन है वो जो बहुत कीमती सोना है उससे भी अच्छे हैं.
Amen. Turn to Psalm 119.
119. भजन संहिता में जाएंगे.
Psalm 119. As you know, this is the longest of all the Psalms.
ये सबसे बड़ा अध्याय है बाइबल में.
And it follows the order of the Hebrew alphabet.
और ये इसमें इब्रानियों की जो वो सीरीज है उसको उसके आधार पे इसको लिया गया है, लिखा गया है.
या
अक्षरों के आधार पर इसको लिखा गया है, उसके आधार पर.
इट्स 176 verses.
इसमें 176 आयतें हैं.
एंड द एंटायर सॉन्ग इज प्रेजिंग गॉड्स वर्ड.
और इसमें पूरे 119 अध्याय में परमेश्वर के वचन की को सराहा गया है.
He's talking about
परमेश्वर की महिमा की गई है.
The value of scripture.
और इसमें वचन की क्या कीमत है, कितनी उसकी वो है, वो दिखाई गई है.
I want to encourage you to read this psalm before you go to bed this evening.
मैं चाहता हूं कि ये पूरा का पूरा 119 अध्याय आज आप अपने बिस्तर में जाने से पहले एक बार इसको जरूर पढ़ें.
But for now, look at verse 11.
आइए 11 वचन के तरफ ध्यान करेंगे.
Let's read it.
तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में संचित किया है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं.
Amen. The reason He puts God's word in his heart.
एक कारण कि उसने अपने हृदय में प्रभु के वचन को रखा है, एक रीजन, एक कारण है उसके पीछे.
Because he does not want to sin against God.
क्योंकि वह परमेश्वर के विरुद्ध कोई भी पाप नहीं करना चाहता.
So let's ask a question.
आइए एक सवाल पूछें.
If he did not put God's word in his heart,
यदि वह अपने हृदय में प्रभु का वचन ना रखता,
what is he saying about sin against God?
और फिर वो पाप करने के विषय में क्या कहता?
He's saying, no big deal, it doesn't matter.
वो कहता कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं होता अगर ये पाप में कर भी लूं.
If we're not putting God's word in our heart, we're saying sin is not a very big problem for me.
और ऐसा ही हमारी जिंदगी में भी, यदि हमारे जीवन में वचन नहीं होता है तो हम भी कोई भी पाप है उसको जस्ट छोटी बात लेकर, अरे कोई बात नहीं, पूरी दुनिया कर रही है, ये पाप छोटी सी बात है.
But if you don't want to sin, if you want to honor God, you will be putting his word into the storehouse of your heart.
आपके अंदर जो स्टोर हाउस है, जो आपके अंदर संचय की जगह है वचन की, उसमें आप अगर आप पाप नहीं करना चाहते तो वहां पे वचन इकट्ठा करेंगे.
The Lord Jesus Christ is full of grace.
प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह से परिपूर्ण है, पूरे भरे हुए हैं.
And he is full of truth.
और वह सच्चाई से परिपूर्ण है.
If you walk with Jesus, you will taste of his grace.
और यदि प्रभु यीशु मसीह के साथ चलेंगे तो उसके अनुग्रह को आप चख सकेंगे.
And you will know his truth.
और आप उसकी सच्चाई को जानेंगे.
Are you a person who is tasting the grace and truth of Christ?
क्या आप ऐसे हैं जो प्रभु के अनुग्रह को चखते हैं?
One final verse.
एक आखिरी वचन.
Psalm chapter 86.
86 अध्याय में जाएंगे.
Psalm chapter 86 verses 11 and 12.
86 की 11 और 12 वचन.
मुझे दिखा तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा, मुझको एक चित कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं. हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा.
आमेन.
आमेन.
वर्स 11, टीच मी योर वे ओ लॉर्ड.
11 वचन में कहा है कि हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे सिखा.
आई विल वॉक इन योर ट्रूथ.
तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा.
Cause my whole heart to fear your name.
ताकि मैं अपने पूरे हृदय को तुझसे भर सकूं.
Verse 12 tells us the reason.
और 12 आयत में इसका कारण दिया गया है.
So that we can give thanks to the Lord.
ताकि हम उसके इसके बदले उसको धन्यवाद दे सकें.
With all of our heart.
पूरे अपने संपूर्ण हृदय से.
To glorify him forever.
ताकि सदा उसकी महिमा कर सके.
When the Lord Jesus Christ saves us,
यीशु मसीह हमें बचाते हैं.
He lets us taste his grace.
और वो चाहते हैं कि हम उनके अनुग्रह को चखें.
And he gives us an appetite for his truth.
और वो हमें इसकी भूख देते हैं ताकि इसके लिए हम लोग चाहत कर सकें.
So that God may get all the glory from our lives.
ताकि परमेश्वर हमारे जीवन से सारी महिमा प्राप्त कर सके. आमेन.
Let's pray.
आइए प्रार्थना करें.